तो संसार में रहते हुए संसार से निर्लेप अवस्था कैसे प्राप्त हो, ये जानना चाहते हैं। एक चीज हम जानते हैं, संसार का जो मालिक है जिसको हम ईश्वर कहते हैं, मालिक होते हुए भी वो संसार से निर्लेप है। मालिक हम भी अपने आप को समझते हैं, अपने मन के मालिक हैं, अपनी देह के मालिक हैं, और जो कुछ भी अपने सुख के लिए हमने साधन इकट्ठे किए हैं, परिवार बसाया है, उसके भी हम मालिक हैं। लेकिन प्रभु मालिक है लेकिन वो निर्लेप है। मैं भी मालिक हूँ लेकिन मैं आसक्त हूँ। आसक्ति का मतलब यह है कि सुख प्राप्ति के लिए जीता हूँ, दुख बिना चाहे मिल जाता है मुझे। इसलिए जब तक आपका निर्णय ये नहीं होता, पूरा का पूरा सांसारिक जीवन बेचैनी उत्पन्न करने वाला है, तब तक आप इस बेचैनी से मुक्त होने का प्रयास नहीं करोगे। ईमानदारी से क्योंकि आम लोगों की धारणा यही है कि संसार में जीना है तो जीने का उद्देश्य तो सुख प्राप्ति ही है। उनको ये नहीं पता कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मनुष्य जीवन भर मानसिक क्लेश भोगता रहता है और ये सुख प्राप्ति का जो मार्ग है ये घाटे का सौदा है। कोई भी अच्छा बिजनेसमैन, उसको यदि ये पता लग जाए कि जो बिजनेस मैं कर रहा हूँ इसमें सारा एनालिसिस करने के पश्चात ये निर्णय निकलता है कि इसमें पैसे की प्राप्ति कम है और पैसे का नुकसान ज़्यादा है, तो विचार करो क्या वो कभी उस बिजनेस को करेगा। लेकिन वो उसको तभी त्यागेगा जब उसके अंदर ये निर्णय हो जाए कि इसमें निश्चित रूप से घाटा ज़्यादा होगा, प्राप्ति कम होगी। उसी प्रकार जो सत्पुरुषों के शास्त्र हैं, उनका जो निर्णय है, पूरी प्रकृति के एनालिसिस के बाद अपने अनुभव के आधार पर ये निर्णय देते हैं कि संसार दुख रूप है, जिसको उपनिषद में कहा गया दुखम सर्वम अनुस्मृत्य काम भोगान निवर्तयेत। मत भूलो कि सब कुछ दुख ही है। सब कुछ दुख का मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि सुख नहीं है, दुख ज़्यादा है सुख कम है। इसीलिए जो जीने का रास्ता है वो काम भोगान निवर्तयेत, कामनाओं और भोगों से निवृत्ति प्राप्त करना है, निर्लेपता प्राप्त करनी है, छुटकारा प्राप्त करना है। लेकिन कामना और भोगों से यदि संसारी लोग छुटकारा प्राप्त कर लेंगे तो जिएंगे किस वास्ते। तो सत्पुरुष कहते हैं कि वास्तव में तुझको चैन चाहिए लेकिन संसारी जीवन में तुझको बेचैनी मिलती है, और वो चैन संसार की किसी वस्तु में है ही नहीं। कोई वस्तु नहीं संसार में जो चित्त को देवे धीर, मंगत नाम गोविंद का हरे सकल तकसीर। सारी मानसिक बेचैनी को हरने वाला केवल प्रभु का नाम है, ये तुमको सीखना पड़ेगा। नहीं तो आपके पास जीने का कोई दूसरा रास्ता या अल्टरनेटिव है ही नहीं। यदि आपके अंदर ईश्वर निश्चय नहीं है तो आपके अंदर संसार निश्चय है, भोगों का निश्चय है, इसलिए आप अनजाने में ही भोगों की प्राप्ति के लिए सारा जीवन लगा देते हो, उसी की प्लानिंग करते हो, उसी के लिए एजुकेशन लेते हो, उसी के लिए कलाएं सीखते हो, उसी के लिए नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, पुरुषार्थ करते हो, पर हाथ कुछ आता नहीं। लगता है कि सुख मेरे हाथ आ रहे हैं, लेकिन यदि पूरा उसका चिट्ठा देखो तो सुख से ज़्यादा तो तुमने दुख भोग ली है, चैन से ज़्यादा तुमने बेचैनी भोग ली। तो आप कंफ्यूज्ड होकर संसारी जीवन जी रहे हो, इसकी क्लैरिटी आपके दिमाग में नहीं है, स्पष्ट नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहले जो है, यदि आप संसार से निर्लिप्त होना चाहते हो या यूं कहें कि निर्वास होना चाहते हो, तो उसके लिए शास्त्रों का गहरा मनन जरूरी है। सत्पुरुषों का निर्णय ही शास्त्र है और कुछ नहीं है। जब तक उस पर आप गहरा मनन नहीं करोगे, गहरे मनन का मतलब क्या है, जैसा लिखा है उस निर्णय के आधार पर संसार का विश्लेषण करना नहीं सीखोगे, हालांकि सत्पुरुष सहायता करते हैं अपने वचनों के द्वारा, अन्य सत्पुरुषों के जो एनालिसिस, उनका अनुभव बातचीत के रूप में उपलब्ध है, तो उसके आधार पर जब आप डिटेल्ड एनालिसिस करते हो तब आप इस निर्णय पर खुद पहुंच जाते हो कि सत्पुरुष की बात ठीक है, यहाँ बेचैनी ही ज़्यादा मिलेगी, चैन कम मिलेगा। तो इसीलिए फिर वो उस मार्ग की तलाश करता है कि जिस पर चलकर मुझको बेचैनी कम मिले, चैन ज़्यादा मिले। तो इसीलिए फिर वो किसी सत्पुरुष का आसरा देता है। जैसे हमने कोई एजुकेशन लेनी हो, मान लिया इंजीनियरिंग करनी है मैंने, तो सबसे पहले इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए मैं कोचिंग लेता हूँ, और किसके पास जाता हूँ, जो उसका मास्टर है, जो गारंटी लेता है कि मैं तुम्हारा सिलेक्शन करा दूंगा यदि तुमने मेरे हिसाब से सीखा था। तो वही गुरु भी गारंटी लेता है, वो कहता है यदि तूने मेरे अनुसार सीखा, मेरे निर्णय के अनुसार अपनी बुद्धि का निर्णय बदला, तो फिर मैं तुझको उस ईश्वर तक पहुंचा दूंगा जिसमें चैन के अलावा कुछ दूसरी वस्तु है ही नहीं। वो खुद शांति रूप है, आनंद रूप है, जीवन रूप है। तेरे देह की तो मौत होती है, तो ये पक्का निश्चय है, लेकिन ईश्वर इस मौत से भी मुझको बचा लेता है। तो इसीलिए ये पूरा विज्ञान हमको सीखना ही पड़ता है, मैं कौन हूं, मेरा बंधन क्या है, इस बंधन से मुक्ति का रास्ता क्या है, जो सुख मैं संसार में तलाश कर रहा हूं क्या ये मुझे मिल भी पाएंगे, या इस सुख के साथ मुझे जो चीज़ मैं नहीं चाहता हूँ वो भी मिल जाएगी साथ में। जैसे कोई ज़मीन में से गेहूं के दाने उठाए, खेत में से, तो ज़मीन में से उठाएगा तो पता लगेगा गेहूं के दाने कम हाथ में आएंगे, मिट्टी और कंकड़ ज़्यादा आएंगे उसके हाथ में। तो सुख तलाश करने चला संसार में, उसके लिए पुरुषार्थ किया, लेकिन बेचैनी मैंने ज़्यादा भोग ली, सारी ज़िंदगी बेचैन रहा किसी ना किसी आइटम को लेकर। तो सत्पुरुष की बात पर जब आपको विश्वास आता है, वो ऐसा प्रोफेसर है जो आपको हर प्रकार के दुख से मुक्त करके ही छोड़ेगा, तो उस गुरु की बात आप सीखते हो और फिर जैसा वो कहता है वैसा परहेज करते हो, और जो आपका सांसारिक जीवन है, देह करके जो जीते हो, वो उसके मार्गदर्शन के अनुसार ही आप व्यतीत करते हैं। तब आपको पहली बार ये निश्चय होता है कि जो सुख का साधन या सुख का रूप, जिसमें दुख मिश्रित नहीं है, संसार के हर सुख में दुख मिला हुआ है, हेड और टेल की तरह से, लेकिन जो प्रभु का सुख है, जिसको हम आनंद भी कहते हैं, जिसको हम शांति भी कहते हैं, वो इंद्रियों का सुख नहीं है। वो जीव के लिए सुख है। तो उसका सुख का एहसास कैसे होता है? तो गुरु आपको अंतर्गत साधना में उतारता है। वो कहता है कि सारे जो दुख हैं, सारी बेचैनी है, सारा जो क्लेश है, वो तो तेरे मन के अंदर समाहित है, और तू मन के कारण ही परेशान है, मन के कारण ही दुखी है। तो मन है देह के अंदर, लेकिन मन भाग कह रहा है संसार की तरफ। मन के अंदर सारी सोच आप बैठ के देख लीजिए संसार की, चाहे वो आपके परिवार के रूप में है, चाहे वो वस्तुओं के रूप में है, चाहे वो आपकी प्लानिंग के रूप में है, चाहे वो आपके कर्मों के रूप में है, सारी सोच आपकी बाहर की है। इसीलिए गुरु का जो प्लान है, गुरु का जो प्रसाद आपसे कराने का तरीका है, वो ये है कि मन की बाहर की सोच खत्म करा के मन के अंदर अंदर की सोच डालना। तो अंदर क्या है? अंदर ईश्वर है। तो जब तक आप इस विज्ञान को सीखो, अध्यात्म विद्या को सीखोगे नहीं, तो आप ईश्वर के महत्व को जीवन में समझोगे कैसे? और गुरु के जीवन को जब तक आप देखोगे, पढ़ोगे, समझोगे नहीं, तो आपको विश्वास कैसे होगा कि अंदर शांति है? हम तो 10 मिनट भी जंगल में नहीं जा सकते अकेले, और महाराज जी 9 वर्ष की आयु में अकेले जंगल में चले जाते थे, 8-8 घंटे 10-10 घंटे वहां व्यतीत कर देते थे, जहां दिन में भी गांव वाले नहीं जाते थे, पीर ख्वाजा जंगल में। तो गुरु का जीवन ये आपको सिद्ध करेगा कि कोई चीज है गुरु के पास जिसके आधार पर वो निडर है, जिसके आधार पर दुनिया की किसी वस्तु में उसका इंटरेस्ट नहीं है। और सारी रात उसका मन उसी वस्तु में लगा हुआ है जिसको हम ईश्वर कहते हैं, और इतना लीन है उसके अंदर कि अपने देह का भी होश नहीं है उसको। तो उसका जीवन ये सिद्ध करता है ईश्वर है, ये कहानी नहीं है। गुरु का जीवन ये सिद्ध करेगा कि ईश्वर है। तो इसलिए यदि आपका किसी पूर्ण गुरु पर फेथ ही नहीं आया, तो ईश्वर पर फेथ कहां से आ जाएगा आपका? क्योंकि हर मनुष्य प्रैक्टिकल चीज चाहता है, प्रमाणिक चीज चाहता है, कहानी किसे नहीं चाहता। वो कहानी किसे सुन लेगा? बड़े बड़े अच्छे, जैसे हम लोग अध्यात्म के लेक्चर सुन लेते ना, कहानी किसे बड़े राग रंग के साथ में, वो तो मनोरंजन हो गया, बुद्धि का निर्णय कहाँ बदलता है? दुनिया में सत्संग सुनने वाले कमी थोड़ा है, करोड़ों लोग हैं सत्संग सुनते हैं, लेकिन उनका आध्यात्मिक मनोरंजन होता है, निर्णय तो बुद्धि का बदलता ही नहीं। तो गुरु का जीवन यदि बारीकी से देखते हो, तब आपके अंदर ये निश्चय पक्का होता है कि ईश्वर है। गुरु भी तो देखने में तो देहधारी मनुष्य है, वो एक दिन वो भी साधक था, उसने साधना करके उस ईश्वर को अपने अंदर प्रकट किया, अर्थात उसका अनुभव किया, और अनुभव करके उसी में वो स्थित हो गया। तो उस मनुष्य का इतना महत्व बढ़ गया कि हम उसको ईश्वर रूप में ही देखते हैं। तो उस गुरु का जीवन, उस गुरु की बातें, उस गुरु का शास्त्र ये सिद्ध करता है कि ईश्वर है, और वो शांति रूप है, वो ज्ञान रूप है, वो आनंद रूप है। उसके अंदर वो आनंद है कि दुनिया का हर आनंद उसके आगे ठीका है। शरीर मनुष्य को कितना प्रिय होता है, लेकिन महाराज जी की हालत देखो। आप घटना जानते हो महाराज जी की, कि एक दिन अंधेरे में ही सुबह को घर से निकल लिए, लेकिन उस रात जो है वो ना चंद्रमा की रोशनी थी ना तारों की रोशनी थी। पहाड़ी पर से जा रहे थे तो पैर फिसल गया, नीचे गिरे, लेकिन उनके देह का कुछ बाल बांका भी नहीं हुआ। सैकड़ों फीट ऊंची चोटी से कोई गिरेगा नीचे तो क्या वो बचेगा? लेकिन महाजी का अपना अनुभव खुद ये बता रहा है कि जिस समय गिरे तो ऐसा लगा किसी लंबे लंबे कोमल हाथ वाले ने इनको पकड़ लिया। तो नीचे गिरकर बेहोश हो गए। जब आंख खुली तो देखा कि सूर्य चमक रहा है, और तब उनको याद आया कि वो सीन इस चोटी से मैं गिरा था। फिर ईश्वर की कृपा याद आई कि कैसे प्रभु ने, उस मालिक ने मेरे बचाया था मुझे। तो गुरु का जीवन गुरु की करनी ये सिद्ध करती है कि ईश्वर है और सारे जगत का कर्ता वही है। वाणी जिसका प्रमाण है, सकल जगत का कर्ता जानो एक भगवान, आप अकर्ता हो रहो यही सार है ज्ञान। जीव ने अकर्ता होना है, तो इसका मतलब जीव के अंदर ईश्वर प्रायणता, ईश्वर के प्रति समर्पण इतना गहरा हो जाएगा कि वो अपनी करनी ही ईश्वर के हवाले कर देगा। उसकी एक ही करनी रह जाती है, ईश्वर का ध्यान। तो इसीलिए जब तक आप शास्त्र को गहराई से नहीं पढ़ोगे, उसका एनालिसिस करना नहीं सीखोगे, और जब तक गुरु के जीवन को बारीकी से नहीं देखोगे, तो आपके अंदर ईश्वर का निश्चय आएगा कहां से? और संसार दुख रूप है, ये निश्चय कहां से आएगा आपके अंदर? संसारी से कह के देख लो किसी से, ईश्वर संसार दुख रूप है या क्या बेवकूफों वाली बात करते हो? मेरे पास तो टीवी है, मेरे पास तो फ्रिज है, मैं तो वहां घूमता हूं, नहीं वहां मौज करने जाता हूं। बड़ी मौज है वो, तो मौज के सब्ज भाग दिखाएगा। लेकिन महाजी कहते हैं, प्रेमी किसी संसारी से मिलो, उससे पूछो भी कैसे हो, ठीक है, बढ़िया है, सब ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन जब दिल की बात पूछोगे पास बैठ के, तब कहेगा कि क्या ठीक है, ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, ये मुसीबत है, वो मुसीबत है, सारा चिट्ठा अपनी बेचैनी का खोल देता है। और हर मनुष्य का यही हाल है। तो अब बताइए, जब तक आपका निर्णय ही नहीं बदला संसार के बारे में, तो आप संसार से मुक्त होने की या निर्लेप होने की दिल से कोशिश क्यों करोगे? एक प्रेमी यहां तपोभूमि में आया हुआ था, तो उसने एक प्रश्न किया। बोला, हम जलेबी खाते हैं तो बड़ी स्वादिष्ट लगती है, बड़ा सुख मिलता है, हम कैसे मान लें ये दुख रूप है? तो सवाल ये है कि यदि कोई शुगर का बीमार हो जाए तो वो बता देगा जलेबी कैसे दुख रूप है? तो इंद्रियों के सुख जिस वस्तु से प्राप्त होते हैं, उसके लिए जो हम पुरुषार्थ करते हैं, जो हम अपनी आयु खर्च करते हैं, जीवन खर्च करते हैं, तो चीजें एक आइटम करके नहीं देखी जाती हैं, इन टोटलिटी करके देखी जाती हैं। ये समाहित रूप से टोटल जो पैकेज हम संसार में अपना टाइम का खर्च कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसका नतीजा किस रूप में सामने आ रहा है? जैसे कि आपके सामने मैंने अभी एक प्रश्न रखा कि कोई बिजनेस करने जा रहा है, टोटल बिजनेस के बारे में सोचे, हर कॉर्नर से निर्णय ये निकले कि इसमें घाटा ज़्यादा है, प्रॉफिट कम है, तो क्या तुम उस बिजनेस को करोगे? जब तक अनजाने हो करते रहोगे, लेकिन जब एक्सपीरियंस हो जाएगा इसमें तो घाटा ज़्यादा है, तो छोड़ दोगे उसको। तो वही बात है, आप जो प्रश्न कर रहे हो कि संसार में रहते हुए निर्लेप कैसे हो, तो निर्लेप होने क्यों लगे आप? पहले आप ये निर्णय तो करो कि आपका प्रश्न ये ईमानदारी से है भी या नहीं है। आपके मन के अंदर अभी संसार के सुखी ज्यादा दिखाई पड़ रहे हैं, दुख कम दिखाई पड़ रहे हैं, तो कभी निर्लेप होने की कोशिश नहीं करोगे, प्रश्न का उत्तर जानने के बाद भी निर्लेप होने की कोशिश नहीं करो। तो इसलिए यदि निर्लेप होना चाहते हो तो पहले ईमानदारी से ये अध्ययन करो कि संसार में बेचैनी ज्यादा है या चैन ज्यादा है। सब कुछ करके जो कुछ भी आप कर सकते हो, तो इसको मनन प्रक्रिया कहते हैं और ये शास्त्रों के आधार पर की जाती है। तो आप वाणी यदि पढ़ते हैं तो यदि एक जगह वाणी माया की कोई वस्तु नहीं संसार में जो चित्त को देवे धीर, यदि एक निर्णय आया है उसकी डिटेल्स भी आई होगी कहीं पर, तो वाणी में दूसरी जगह उसकी डिटेल्स भी आई होंगी। क्यों? उस एंगल से जब हम खोज करेंगे, शास्त्र को पढ़ेंगे या वाणी को पढ़ेंगे, उसका उत्तर मिल जाएगा। वाणी वहां यह भी आ रही है कि गर्भ से लेकर मरण तक मनुष्य का जीवन कैसे दुखरूप है, पूरे एक पेज की वाणी लिखी हुई है वहां पर, और जाने कितनी जगह आई होगी वो। जन्म से लेकर मरण काल तक जीव भ्रम में ही समय अपना व्यतीत कर देता है। वो वाणी पढ़कर तो देखो, फिर वहां एनालिसिस है। उस एनालिसिस को आप अपनी बुद्धि से और गहराई में ले जाते हो, फिर उसका डिटेल्स अपनी खुद बना लेते हो। भाई सत्संग आपकी यही सहायता करता है। कई बार आप अपनी बुद्धि से खुद नहीं सोच सकते हो, तो कोई जागरूक इंसान है, शास्त्र का मनन करने वाला है, वो आपको उसकी डिटेल्स को समझा देता है। लेकिन निर्णय आपका यही होता है फाइनली कि संसार में सुख कम है और बेचैनी ज्यादा है। हर मनुष्य को चैन चाहिए, इसीलिए जिसने चैन प्राप्त किया है वो उसकी खोज करता है। तब उसको यही सत्संग, यही जो है ईश्वर भक्त लोग हैं या शास्त्र हैं, ये बताते हैं कि गुरु वो मनुष्य है जिसने ईश्वर को प्राप्त किया है, चैन का स्रोत प्राप्त किया है, जिस स्रोत को प्राप्त करके बेचैनी उसको टच ही नहीं कर सकती। तब वो गुरु की बात पे विश्वास करता है। और फिर जब गुरु कहता है कि भाई ये मंत्र लो, इसका जाप करो, नहीं? मंत्र का जाप ये ईश्वर का संग करना है, क्योंकि गुरु जब मंत्र देता है या मंत्र कोई हमारे लिए प्रकट करता है तो वो आपको साथ में शिक्षा देता है। ये मंत्र नहीं है, ये गुरु का मंत्र रूप में अवतरण है, गुरु का मंत्र रूप में मैनिफेस्टेशन है, ये लाइव गुरु है। इसलिए उपनिषद में कहा गया नाम ब्रह्मेति उपासते, नाम को ब्रह्म जानकर उपासना करनी चाहिए। इसलिए महर्षि रमण कह रहे हैं कि मंत्र आत्मा का स्थूल रूप है। इसलिए गीता में कृष्ण कह रहे हैं मंत्रो अहम, मैं मंत्र हूं। और गीता में कह रहे हैं यज्ञाणाम जप यज्ञो अस्मि, यज्ञों में जप यज्ञ मैं स्वयं हूं। तो जप किसका किया जाता है? मंत्र का ही तो किया जाता है। तब आप एकाग्रचित होकर संसार के प्रोग्राम को छोटा करके, समय तो आपके पास है 24 घंटे का, सबके पास बराबर 24 घंटे का ही है, लेकिन जब आपकी बुद्धि का निश्चय बदलता है तब आप टाइम को सुख प्राप्ति की या सुख सुखों की कमाई के लिए जो खर्च कर रहे थे संसार में, वहां से कट करते हो, उसको उस प्रोग्राम को कट करते हो, और जिस प्रोग्राम पर चलकर आपने परमानेंट सुख प्राप्त करना है उसके लिए टाइम आप धीरे धीरे बढ़ाते हो, क्योंकि समय तो सबके पास 24 घंटे का ही है। तो हम जो बिजी हैं बुरी तरह से संसार में, वो अपनी नासमझी के कारण बिजी हैं। जब मेरे अंदर ये सही समझ पैदा होती है जीवन के बारे में, तब मैं मूर्ख नहीं हूं, तो मैं अपने जीवन को बचाने की कोशिश करता हूं। मैं बेचैनी की कमाई क्यों करूं, मैं तो चैन की कमाई करता हूं। इसलिए गुरु की बात मानकर मैं अंतर यात्रा करने की कोशिश करता हूं, जिसका रास्ता है सिमरन। तो मैं जब सिमरन करने बैठता हूं, सिमरन का अभ्यास करता हूं महीनों वर्षों तक, तब मेरे अंदर एक प्रॉब्लम नजर आती है कि मैं मंत्र पर टिकना चाहता हूँ, मंत्र को दिल से याद करना चाहता हूँ, लेकिन मन के अंदर जो संस्कार बैठे हुए हैं, मन के अंदर जो संकल्प उठ रहे हैं, वो सारे मुझको संसार की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि बाहर के संकल्प हैं, संस्कार आके वही बने हुए हैं। तो वो आपकी वासना के कारण, आपके संस्कारों के कारण वो सारे संकल्प जो हैं आपको बाहर की याद बार बार दिला रहे हैं। उस समय आपको ये पता लगता है कि देखो ये मन मेरे लिए कितना बेचैनी का कारण है, और पूरा का पूरा मन कुछ भी नहीं है, केवल वासना का सागर है। आपका ही मन संसारी वासनाओं का, संसारी डिजायर्स का वो सागर है, और आप परेशान हो रहे हो, अपने ही मन को देखकर आप परेशान हो रहे हो। तो अब बताइए, ईश्वर ने, गुरु ने आपको ईश्वर दिया, किस रूप में दिया? मंत्र रूप में ईश्वर दिया आपने, क्योंकि मंत्र में वो ताकत है जो हर प्रकार की मन की बेचैनी को भस्म कर देगी, वो शक्ति है मंत्र के अंदर। इसलिए वाणी, महामंत्र की महिमा की वाणी कह रही है, कलह कलेश सब दूर होए, एक दो की बात नहीं कर रही है। तो कलह कलेश किस रूप में होते हैं आपके अंदर? संकल्प रूप में होते हैं। तो सब दूर का मतलब मन के अंदर ये वासना का सागर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, सूख जाएगा। तो फिर मंत्र जो है वो ईश्वर रूप ही है, इसीलिए मंत्र शक्ति से जब आपकी धीरे धीरे और बाहर के संयम से, विवेक के बल से आपकी बुद्धि में वैराग्य पैदा होता है, संसार की वस्तुओं में जो राग था, जो अटैचमेंट था, वो धीरे धीरे भंग होता है, आपके आपको उसके अंदर दुख दिखाई पड़ने लगता है, बेचैनी दिखाई पड़ने लगती है, जीवन की विफलता दिखाई पड़ने लगती है, और सफलता किस में दिखाई पड़ती है? ईश्वर प्राप्ति में, ईश्वर प्रेम में। तो इसीलिए आपका जोर दिल से सिमरन पर रहता है, और सिमरन में जब ये आपका ही मन बाधक बनता है, तब आपको एहसास होता है ये मन ही मेरे लिए बंधन रूप है। तो आप मन का क्या करोगे फिर? आप मन कोई वस्तु तो है नहीं जो मांस दोगे उसको साफ कर दोगे। तो इसीलिए मंत्र के द्वारा ही माँ जी कहते हैं कि ये सिद्ध मंत्र जो है, ये महामंत्र जो है, ये जन्म जन्मांतर के संस्कार भस्म कर देता है। तो एक तरफ तो आप साधना के द्वारा संस्कार भस्म कर रहे हो, और दूसरी तरफ संसार के भोग विलास करके संस्कार बना रहे हो आप, तो ये काम कैसे होगा फिर? इसीलिए माँ जी कहते हैं, प्रेमी जब तक तेरे अंदर सही विवेक और सही वैराग्य नहीं होता, सही अभ्यास तेरा नहीं बन सकता। तो सही अभ्यास का मतलब मन की निरंतर सफाई होती रहे। तो इसीलिए संसार में तेरा बैलेंस्ड प्रोग्राम चलता है। माँ कहते हैं, प्रेमी तू स्वार्थ का जीवन मर्यादा में रहते हुए, तेरी जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूर्ण हो जाएं, सुख भोग की लालसा के साथ नहीं, वो तो तेरा निर्णय हो गया, गुरु के वचन समझ के, शास्त्र के वचन समझ के ये निर्णय तो हो गया। संसार में यदि मैंने और दिल लगाया तो अब मेरी खैर नहीं है। तो वहां तो तू केवल काम चलाने वाली बात करता है, जिसके लिए महाजी मर्यादा का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, और दिल तेरा अंदर सिमरन में ही लगता है, उसी प्रोग्राम में चलने की कोशिश करता है। और संसार में यदि तेरा तू दिल लगता भी है तो निष्काम सेवा में लगता है, कि इस देह से, महाजी कहते हैं प्रेमी तन मन धन तीन चीजें प्रभु ने दी हैं तुझको, तो मन में विचार होते हैं, मन में संस्कार होते हैं, तो तेरे अंदर जो शास्त्रों का ज्ञान तेरे अंदर मन में इकट्ठा होता है, सत्विचार इकट्ठे होते हैं, मन के द्वारा, विचार के द्वारा सेवा करके तो दूसरों का दुख दूर करने की कोशिश करता है। कोई बड़ा बेचैन व्यक्ति तेरे पास आया, रास्ता पूछा, इस बेचैनी से कैसे मुक्त हूँ, तुझको शास्त्रों का ज्ञान है, सही रास्ता पता है, तो विचार के द्वारा उसकी मदद करता है, उसकी बेचैनी दूर हो जाती है। तो मन के द्वारा सेवा, तन के द्वारा सेवा हम जानते हैं, शरीर के द्वारा जो भी किसी की सहायता कर दो, धन के द्वारा भी जानते ही हैं, जो भी वस्तुएं हैं धन संपत्ति है उसके द्वारा भी किसी की सेवा करते हैं, दुख दूर करते हैं, लेकिन निष्काम रूप में, उसके रिटर्न के रूप में कोई प्राप्ति नहीं चाहिए मुझको। तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति का मन अंदर टिकने लगता है, क्योंकि बाहर का तो रस उसका धीरे धीरे कम हो गया ना, तो उसका मन जब अंदर टिकने लगता है तब ये मंत्र शक्ति के बल पर अंदर जो आत्मशक्ति है, जिसको कुंडलिनी कहते हैं, जिसको नाद कहते हैं, वो इस देह के अंदर जागृत हो जाती है। तो फिर ये जीव यानी मैं उस मंत्र के स्थान पर, मेरा ध्यान कहाँ टिक जाता है, उस नाद पर या उस कुंडलिनी की धारा पर टिक जाता है। तब मेरे अंदर वो निश्चय और दृढ़ हो जाता है कि ये शक्ति ईश्वर शक्ति है, जिसको रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि जैसे सूर्य का प्रकाश है, तो सूर्य का ही तो प्रकाश है, प्रकाश सूर्य से अलग थोड़ी ना है, प्रकाश सूर्य से अलग होता है क्या, प्रकाश सूर्य का ही है। तो इसी प्रकार जो अंदर वो शक्ति है, जो नाद रूप में आपको अनुभव हो रही है या कुंडलिनी रूप में आपको अंदर अनुभव हो रही है, वो शक्ति ईश्वर रूप ही है, वो ईश्वर की ही शक्ति है। तो इसीलिए उस शक्ति में आपका ध्यान लगता है। इसलिए महाराज कहते थे प्रेमी, लोग सीधा ध्यान लगाने की कोशिश करते ना अंदर, प्रेमी अंदर कोई चीज प्रगति नहीं, तेरे अंदर ईश्वर की शक्ति अंदर प्रगति नहीं है, ध्यान किसका किस पर लगाएगा तू? तो इसलिए प्रारंभ तो जप से ही होता है, लेकिन जप किसका, पूर्ण गुरु के सिद्ध मंत्र का, क्योंकि फिर वो मंत्र नहीं है, वो खुद अवतार है। जैसे ईश्वर की शक्ति है, ऐसे ही वो मंत्र भी ईश्वर की शक्ति है। नहीं तो महर्षि रमण ये बात क्यों लिखते कि मंत्र आत्मा का स्थूल रूप है? उपनिषद ये बात क्यों कहता कि नाम ब्रह्मेति उपासत, नाम को ब्रह्म जानकर उपासना करनी चाहिए? महाजी की वाणी ये क्यों कहती है, त्रयोदश अक्षर मंत्र ये सर्व सिद्धि दाता, जो सिमरे नित प्रेम से मंगल पाए अपार, अपार कल्याण होगा अर्थात मोक्ष होगा उसका। तो इसीलिए मंत्र को ईश्वर जानकर, मंत्र को साक्षात गुरु रूप जानकर, ये जीव उस मंत्र में मन लगाने की कोशिश करता है। और जो मन संसार में लगा हुआ था इस मंत्र शक्ति के बल पर और तेरे विवेक और वैराग्य के बल पर, तू मंत्र के साथ एक होने में सफल हो जाता है। और मन के संकल्प बंद तो नहीं होते हैं, लेकिन इतने वीक पड़ जाते हैं और उनके अंदर संसार का अट्रैक्शन इतना कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि निश्चय बदल गया ना बुद्धि का, कि मंत्र में तेरा मन लगने लगता है। और इस मंत्र शक्ति के बल पर, इस साधना के बल पर, तेरे अंदर की जब सफाई होती है और तेरी बुद्धि का निश्चय बदलता है, तो अंदर वो शक्ति ईश्वर शक्ति जागृत हो जाती है। तो फिर उसमें तेरा चित्त लगा रहता है, उसके आनंद में, उसके प्रेम में, क्योंकि वो आनंद रूप भी है, वो प्रेम रूप भी है, वो जीवन रूप भी है। तेरी वही शक्ति तेरे जीवन का संचालन कर रही है, सारे शरीर को वही शक्ति चला रही है, जिसको वाणी भी सिद्ध कर रही है, नाभ कमल है अचरज थाना, जामे वसया श्री भगवाना, जा से उपजे श्वास का थंबा, सुरती खेले खेल अचंबा। वो नाभि कमल जब जागृत होता है मणिपुंज चक्र है, तो वहाँ से ये नाद या फिर ये कुंडलिनी का अनुभव आपको प्रारंभ होता है। तो कहते हैं वो प्राणों का आधार है, ये श्वास उसी से ही उत्पन्न होती है और उसी में लीन होती है, ये सत्पुरुषों के अनुभव की बात है, ये मेडिकल साइंस नहीं है, यहाँ सारी साइंस फेल है, ये साइंस से, संसारी विज्ञान से ऊपर की बात है। तो मेरे जो प्राण चल रहे हैं, प्राणापान, इसका मालिक भी वो कुंडलिनी ही है, और डेथ के टाइम में ये प्राण मेरे जो है जो बिल्कुल ही रुक जाते हैं, तो उस समय रुक नहीं जाते हैं, ये कुंडली के अंदर ही जहां से आए थे वहीं प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए कई बार देखा होगा लोगों की जो है मौत हो जाती है, श्वास उनकी दोबारा लौट के जाती है, श्वास उनकी निकली ही नहीं थी, वो तो कुंडली में प्रवेश किया था उसने, वहां से फिर आ गई, वो वापस आ सकती है। तो ये तो योगी तो सारे जानते ही हैं। अब महाजी यदि समाधि में जा रहे हैं तो समाधि की अवस्था में प्राण तो शांत हो जाता है, ध्यान कुंडली में होता है और इतना गहरा ध्यान होता है कि उसमें लीन होता है, जो ध्यान उसमें लीन होता है तो उससे समाधि हो जाती है। तो महाजी कहते हैं प्राण इतना सूक्ष्म हो जाता है कि उसका पता ही नहीं लगता है, चल भी रहा है नहीं चल रहा है। तो इस सिद्ध पुरुषों की सारी बातें अनुभवी बातें हैं, कोई कहानी किस्सा नहीं है वो, ये चीजें लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं की जा सकती। तो इसीलिए जैसे जैसे आपका मन उस कुंडली में लगता है, आपका ध्यान उसमें लगता है, वैसे वैसे आपके अंदर शांति, आपके अंदर आनंद, आपके अंदर प्रेम बढ़ता रहता है और सार की संसार की सारी वासनाएं आपको फीकी लगती हैं। तो इसलिए आपका चित्त जो है वो उनके प्रति निर्लेप होने लगता है, उसमें सुख नजर ही नहीं आता, उसमें तो दुख का ही दर्शन करते हो आप, फिर एकांत में भागने की कोशिश करते हो, हे प्रभु इस संसार के शोरगुल से मैं जाऊं एकांत में। इसलिए प्रभु प्रेमी देखा होगा एकांत में रहने की कोशिश करते हैं, और आनंद अंदर ज्यादा बढ़ गया तो महाजी खुद कहते थे प्रेमी घर छोड़ के पीर ख्वाजा जंगल में रात को ही चले जाते थे, पूरी पूरी रात व्यतीत करते थे। तो अब बताइए वो प्रभु का आनंद इस देह के अंदर मौजूद है या नहीं है, ये सत्पुरुषों के भक्तों के जीवन से पता लगता नहीं लगता है। और वो प्रभु निर्लेप है, वासना रहित है। तो इसीलिए जैसे जैसे आपका चित्त उसमें लगता है आप भी वासना रहित होते चले जाते हो। और बाहर शरीर का बस इतना ही रह जाता है कि भूख लगी तो खाना खा लिया, कोई प्रारब्धवश, क्योंकि प्रारब्ध का मतलब प्रभु का हुक्म, प्रारब्धवश कोई कार्य सामने आ गया वो आपने निष्काम भाव से कर दिया, बाकी आपका संसार से कोई वासना नहीं, क्योंकि मन लगी नहीं रहा संसार में आपका, अपनी मंजिल तो आपको अंदर दिखाई पड़ रही है। तो इसीलिए ये धीरे धीरे ये किसी का एक जन्म में ही काम हो जाता है, क्योंकि कहाँ से स्टार्ट किया है इस पर डिपेंड करता है, क्योंकि जन्म देह का है, जीव का जन्म नहीं है, जीव की लाइफ कंटिन्यूअस है। इसीलिए जितनी कमाई पिछले जन्म में करके आया है अगली कमाई उसकी वहाँ से स्टार्ट होती है। सांसारिक एजुकेशन जो पढ़ के आया है वहाँ PhD की थी उसने, यहाँ तो उसने काका ही पढ़ना पड़ेगा नए जन्म में, लेकिन जो ये आध्यात्मिक कमाई है ये पूर्व जन्म की निरर्थक नहीं जाती, ये सारी की सारी सुरक्षित रहती है। इसीलिए बचपन से उससे आगे आपकी लाइन चलती है। तो इसलिए माँ जी कहते हैं प्रेमी ये एक जन्म में, दो जन्म में, तीन जन्म में यदि लगातार कोशिश करते रहे तो वो अवस्था प्राप्त कर लेता है जिसको आत्मस्थिति कहते हैं, और उसके पश्चात वो आत्मनीनता ही प्राप्त करता है जिसको सहज समाधि कहते हैं। वो है निर्लेप अवस्था जहाँ पहुँच कर फिर कुछ करना कराना बाकी नहीं रहता, ये जीव खुद अपने उस रूप को जान लेता है जिसको ईश्वर रूप कहते हैं, जिसको आत्म रूप कहते हैं, और वो निर्लेप अवस्था है जो सही जैसा गुरु ने मार्गदर्शन किया है, जैसा शास्त्रों ने मार्गदर्शन किया है, उसके अनुसार जब मैं सोचता हूँ, उसके अनुसार जब मैं अपने निर्णय बदलता हूँ, उसके अनुसार जब मैं साधना करता हूँ, तो ये निर्लेप अवस्था मुझको प्राप्त हो जाती है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वथा।